पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है, ये पेड़ से ही शुरू होता है, तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, इसके ऊपर फिर डार है ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और ये पात रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनिया हैं ये समझो, ये देवता समझो, और आगे हम ये पात रूप संसार, और ये जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है, इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कौन है, ये है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या, इसकी इसका तना है और सरपुरुष ये मोटी डार है और तीनों देवा शाखा है ये पांच रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुणात्माओं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सदग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है, और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सदग्रंथ कोई समय विशेष के लिए नहीं होता, या जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता, या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते हैं। जैसे ये पवित्र वेद, पवित्र गीता जब बोले गए थे उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं, आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया, तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए, बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए, उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक, नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 81, सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली, दूरभाष इतने इतने, फैक्स नंबर इतने, और मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 7 पर ही पढ़ रहे हैं, प्यारे नबी सलल ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव, जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते। अपनात्मा अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा, जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब ये यहां से छपिए है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ, जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली, राजकुमार जैन कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति है सारा कुछ। और यहां से जम्बूद्वीप इस्तनापुर, धीरेन्द्र जैन न्यू अदस्य वेबसाइट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं, ये बाद में हम बटते चले गए और बांट दिए इस काल भगवान ने, अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भर्म की भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवत गीता ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंच दसो अध्याय प्रथम मंत्र, ये पंद्रहवां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है, ये अवय है अविनाशी। छंदासी यस्य प्रणानी इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि शाखा आदि इसके विभाग हैं, ये तम वेद जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला वो तत्वदर्शी संत है। इविन की अनुवाद देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूपी मूल रूप है, यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है, इन्होंने यहां गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिसे, ये गलत कर दिया इन्होंने, इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने अधः दो बार है, अधः अधः इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। नेक्स्ट पृष्ठ पे अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अब यहां देखेना, अब फिर आगे मंत्र नंबर एक पे, पंद्रहवें अध्याय का मंत्र नंबर एक, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये कहना था कि ऊपर को जड़, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वादि पुरुष परमेश्वर समझो, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद ये छंद कह दिया, वेद नहीं, ये जो नीचे शाखा और पत्ते रूपी जो विभाग है, छंद माने विभाग, उसके खंड जिसके पत्ते हैं कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वेद वेद माने जानता है, स वेदवित, स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाले इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब वो स्वयं परमात्मा आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाणित किया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर वो ऊपर के लोक में रहता है, सब भुवनों के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी अरस कुरस पर अलह तकत है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, और वहां मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा उसका आकार है, और वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सह शरीर आता है मनुष्य सदृश, और यहां आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को पुण्यात्माओं तक पहुंचाता है, उनको सुनाता है। तो उस अल्लाहु अकबर ने, उस बड़े भगवान ने, उस कादिर मालिक ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर बताना पड़ा। और तो जान कैसे सकते, तो उन्होंने कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, क्योंकि उनका आदेश था। जब वो मालिक आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, ना उनका जन्म हुआ और न उनकी मृत्यु हुई। सह शरीर आए थे, सह शरीर गए थे। वो कौन? काशी के अंदर वो अल्लाहु अकबर, वो धानक जुलाहा रूप में वो परमात्मा स्वयं वहां रहे। अपनी जानकारी आप ही दी, यथार्थ ज्ञान भी आप ही बोला, जो सचिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा ऊपर लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने भी वही ज्ञान एज इट इज मालिक का दिया हुआ अपनी अमृत वाणी में बोला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ मूल मालिक है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक, मूल कौन परमात्मा है, मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन पुरुषों की, पुरुष माने प्रभु, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाहु अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द सर पुरुष और सर्वब्रह्म और ज्योतिरूपी निरंजन काल, ये इस कालब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सर पुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपना आत्माओं, जो सर पुरुष है, सर पुरुष कहो, इसको सर्वब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो, इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं, इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सर्वपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सर्वपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सर पुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है, वो ओवरऑल कंट्रोलर है, वो वास्तव में महान परमात्मा है, वो अल्लाहु अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सत्पुरुष सत्य पुरुष कहो और ऑल माइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो, वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रगट हुए, वहां से नीरू नीमा नाम के चुलाहा दंपति निसंतान थे, वो उठा ले गए। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी, सचिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में कबीर वाणी में सच्चिदानंद गणब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था, तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था वो इस दास को दिया, तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला, और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ की आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी, इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15, इसका अनुवाद यहां किया है कि वैसे ये श्लोक यहां से देखिए संस्कृत अच्छी तरह समझ में आओगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सर्पुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नाशवान, सरकार तो था नाशवान, अक्षर होता विनाशी, सर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में, जो नाशवान स्थिति के लोक हैं अक्षर पुरुष और सर्पुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानि माने प्राणी, वो तो नाशवान है, और जीवात्मा किसे की मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड अगर देखे भी ना मरती। यहां अनुवाद किया उन्होंने, देखिएगा, इस संसार में सर्व माने नाशवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, दो परमात्मा पुरुष कहे हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहां कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सर्पुरुष से और अक्षर पुरुष से, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक धर्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपुन आत्मा जैसे ये सर्पुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है नाशवान है, और अक्षर पुरुष इसको अविनाशी क्यों कहा, अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीट करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से और है पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य, और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, और ये एक सरपुरुष के, ये सरपुरुष का लोक है, और इसी के फिर आगे इस सरपुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा है। ये तो बहुत नीच आगे चल के भगवान है, स्वामी है। अब ये यहां से पौधे को यानी पेड़ को खुराक आहार पालन पोषण कहां से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं जच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं, प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतना उसके उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, मंत्री एक प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मंडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है।
दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार।
सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्किरा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे तीन खुदा, कुछ कहेंगे दस, कुछ कहेंगे सौ, कुछ कहेंगे हजार, और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथियज्म। पैंथियज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है, आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे।
दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार।
जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जैसे प्रत्येक प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है वो एमएलए साहब कहलाते हैं, तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है, ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे, उस ये भी साहब है अपने सत्र के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार से भी क्या करती है, जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह, अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है, और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठाकर अपने पति के साथ अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई, लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुंह तो डंगते बोले और न ननदते, न जेठ, न जेठानी, न ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी, रोज घर में दगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं, और जल कहाँ है, जमीन में, जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित नियम करना, नित नियम कहो, नमाज कहो, इसको सब अध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहू अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए और उस सतलोक में जाने के लिए जहां सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहू अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने वो की लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी साधना करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उसे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा है कबीर देव कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहां कोई दुख नहीं है, वहां जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती है। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे, अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकार। आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं, तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके तीन पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी, ये इसके प्रधान हैं तीन, एक एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है, जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता, वो एक मंत्री है कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता, ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है, वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य है इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है, इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं, ये सारे खुदा हैं, लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाह अकबर का, बड़ा भगवान का, इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा का ना बड़े कण की आवश्यकता नहीं थी, जब और खुदा होते ही नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता थी, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह, तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं, ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद भगवत गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन चार वेदों का पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है जिसको तत्व ज्ञान कहते, वो तो कंप्लीट गॉड गिवन है, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तो इस दास के पास उपलब्ध है, उसी ज्ञान के आधार से तो सारा ज्ञान समझ में आया, नहीं तो सब उलट पुलट हो ही रहा था। तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता और बाइबल का ज्ञान दाता, यानी बाइबल के अंदर तीन बुक होली बुक इकट्ठी जल्द है, नंबर एक तोरात, नंबर दो जबूर, नंबर तीन इंजिल, उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन चारों वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के वो मूल ज्ञान दिया है जिसमें और आल ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, वो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायम करता चले मैदान।
दर्शकों आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
सर सर जी,
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
सर्वेश दास।
सर कहाँ से आए आप?
भगत जी मैं गांव भोगी प्रवा तहसील लखीमपुर और डिस्ट्रिक्ट खीरी यूपी से आया।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
भगत जी मैं किसी देवी या देवता को इष्ट रूप में मानकर किसी की भक्ति नहीं करता था। भगत जी मैं एक तलाश में था, मैं खोज रहा था कि वास्तव में परम शक्ति कौन सी है, जो हमारे हिंदू धर्म में बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही देवता हैं जो परम शक्ति का प्रतीक है। और फिर मैं अपने हिंदू धर्म के जो मानने वाले गुरुजन थे, ब्राह्मण लोग थे, उनसे पूछा करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो माता पिता हैं या नहीं है, कि यही ही ब्रह्मांड को रचाने वाले हैं। और तो बताते थे कि इनके माता पिता नहीं हैं और यही सर्वेश्वर हैं, यही महेश्वर हैं, और इनका जन्म नहीं होता है और ये अमर हैं। फिर उदासी रहती थी मन में, एक कक्षा एक में पढ़ता था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं और उसे प्रेम से शीश झुकाएं। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि वो ईश्वर कौन सा है जिसने तारों और चंद्रमा को और सूर्य को बनाया है, सारा जगत बनाया है, ये नहीं मालूम था। और मैं ढूंढ रहा था कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, और मैं कौन हूँ, मैं जन्मता और मरता क्यों हूँ, यहाँ यातनाएं क्यों सह रहा हूँ, 84 लाख योनियों में क्यों डाला जाता हूँ, और कर्मों के बंधन में कैसे फंस गया। हमें एक भगत जी मिले थे, उनकी ससुराल हमारे गांव में थी, तो वो ज्ञान चर्चा कर रहे थे अपने ससुर से। उनके ससुर वैष्णवपंथी थे और तो मान नहीं रहे थे, कुछ उनसे अटपट हो रही थी। सुबह सुबह हम पहुंच गए टहलने के लिए वहां, तो पहले तो भगत जी वो सिगरेट पीते थे और मैं पान की दुकान लगाता था, मैं पान लगाता था भगत जी। तो पहले तो आते थे तो कैप्टन फिल्टर एक सिगरेट आती थी, वो मांगते थे, पीते थे। तो हम वहां गए तो कुछ कह रहे थे कि आप अपने ससुर से, तो ससुर उनका बहुत नाराज हो रहा था, उनसे कह रहा था कि तुम बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो, कबीर को परमात्मा बता रहे हो। तो हमने कहा भाई क्या मामला है? तो भगत जी कहने लगे कि कबीर परमात्मा है और ये मान नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कबीर परमात्मा कब से हो गया? कबीर तो एक जुलाहा था और स्वामी रामानंद का शिष्य था और अटपट सी भाषा लिख कर चला गया, उसकी तो उल्टा भाषा है, कबीर परमात्मा नहीं है। तो भगत जी कहने लगे ऐसा मत बोलो, परमात्मा वो परमात्मा ही है और बिना जाने किसी को गलत कहना उचित नहीं है। हमने कहा आपके पास क्या प्रमाण है? उन्होंने हमें कहने लगे कि पढ़े हो? हमने कहा हाँ थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हिंदी जानते हैं। तो कहने लगे कि ये ज्ञान गंगा है, लीजिए और पढ़िए और सच्चाई जान लीजिए। तो मैं पान भी लगाता था और पुस्तक भी पढ़ता था। फिर जब मैंने सच्चाई का पता जाना, फिर उसमें लिखा था कि गीता के अध्याय में और श्लोक नंबर इतने इतने पे ये लिखा है, हमारे दिल में थोड़ा सा खटक लगा। हमने कहा ऐसी प्रमाणित बातें मतलब इसमें लिखी हैं कि ऐसा ही है, हम गांव में आए तुरंत और एक श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई थी, हमने उसको उठाया और देखा। उसमें वास्तव में लिखा था कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस परमात्मा की भक्ति कर और परम धाम को चला जाएगा, फिर वहां से लौटकर, जो प्राणी वहां चले जाते हैं फिर वहां से लौटकर यहां नहीं आते हैं, और मैं भी उसी परमात्मा की आदि नारायण की शरण हूं। मैं इतना देखा तो हैरान सा रह गया और मैंने सोचा कि मैं अब जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। फिर मेरे मन में उछाल आती थी कि अभी तो छोटा है, क्योंकि अभी हमारे समाज में ये बुराई फैली है कि बच्चा छोटा होता है तो कहते हैं अभी भक्ति नहीं कर सकते। तो हम यही सोचते थे कि अभी मैं छोटा हूं, अभी तो मैं चंद दिन का हूं, कुछ दिन खा पी लूं, टहल लूं, फिर जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मंत्र ले लूंगा। फिर एक दिन मेरे गांव में साइड में एक लड़का था, हमारी ही उम्र का, एक साल हुआ था उसकी शादी का। भगत जी, तो दो दिन पहले अच्छा था और दो दिन बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल स्वस्थ था दो दिन पहले, और दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे मन में एकदम खटाक सा लगा कि जिंदगी तो बहुत थोड़ी सी है और टालता रहूंगा तो पहुंच नहीं पाऊंगा, और फिर वहां से हमने निकल लिया।
सर, जो सतभक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
भगत जी, सबसे बड़ा लाभ तो हमें यही मिला कि मेरा परम कर्तव्य मनुष्य जन्म जो जा रहा था, बह रहा था, समाज के बहाव में जा रहा था, 84 लाख योनियों में जा रहा था, ना जाने कब से मैं तड़प रहा था परमात्मा की तड़प में, तड़प रहा था कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो परमात्मा हमें मिल गया है। बस सबसे बड़ा यही हमारा जो है सबसे बड़ा उद्देश्य था और ये हमें प्राप्त हो गया।
सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भगत जी, मैं भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ। भगत समाज से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो कहते हैं कि वो संत रामपाल जी जो है एक इंसान है, मैं इंसान को भगवान नहीं मानता हूँ, तो उन भक्तों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जब श्री कृष्ण आए थे इस पृथ्वी पे, तो क्या वो भैंसा बनकर आए थे या घोड़ा बनकर आए थे, कैसे आए थे? और जो पत्थर की मूर्ति पर विश्वास करते हैं, उन भक्तों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उस पत्थर में समझते हैं कि कहते हैं कि प्रहलाद जो था तो पत्थर में परमात्मा को प्रकट कर दिया था, तो उन भक्तों से कहता हूं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि प्रहलाद पत्थर की पूजा नहीं करता था, प्रहलाद खंभे की पूजा नहीं करता था, वो नाम की भक्ति करता था, परमात्मा के नाम की कमाई करता था। और जो भक्त नाम की कमाई करता है तो पत्थर घास में भी परमात्मा प्रकट हो सकता है। और उन भक्तों से मेरा प्रार्थना है कि यहाँ सतलोक आश्रम जिला हिसार हरियाणा भारत आएं और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना जीवन का कल्याण कराएं। सत्साहेब
जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया उसको वे अपना खुदा मानते हैं, और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं, जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहिसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण ये कहां से प्राप्त होती है। इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कहां से छपी है? प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहां देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में, और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक है गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान, सूरत, यह है कुरान शरीफ, कुरान शरीफ, यह है सूरत फुरकान 25, और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर। हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत और झूठ को जांचने का, यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ की, पूरी कुरान शरीफ का यह निष्कर्ष है, यह मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। यह सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के, हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फलातुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको, ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है, ये यहां से, इसका पूरा, पूरी जानकारी है कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के, हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई, इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फलातुतियल काफिरन ने जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो, तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहां अनुवाद किया है इसके साथ में, ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन्हें कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहां से देखिएगा, उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पर हम आगे नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फलातुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है, ये अनुवादकर्ता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य यह है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना, ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना मानने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मानकर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते, तो आप इनकी बातों में मत आना। सीधी सी बात है, ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं, अब क्या बताया है देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो, ये बिल्कुल सही। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं के को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ लिया, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहु बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हां जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, ये चैतन्य ने अर्थ गलत किया है, इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे।